और क्योंकि कविता उसे हर समय इसकी याद दिलाती थी, इसलिए उसने कविता पढ़ना भी छोड़ दिया। अब उसने गहन से गहन विषयों की पुस्तकें निकालकर पढ़नी शुरू की। सबसे पहले नीत्से का थस स्पीक जरथुस्त्रा, फिर डार्विन की विकासवाद संबंधी किताबों से शंकर, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस की जीवनियों, डॉक्टरी की किताबों, होम्योपैथी, मानसिक रोग संबंधी साहित्य, शरीर विज्ञान, प्राणायाम और यौगिक क्रियाओं और खाद्य विज्ञान तक पुस्तकें, कोई हो कैसी हो, जरूरी केवल यह था कि वह ऐसी हो कि पढ़ने में रुचि ना हो, मन को ठोक पीट कर पढ़ी जा सके। और वह अपने ही पर वे सारे प्रयोग करने लगा जो उसे इन विभिन्न पुस्तकों से में मिले। उसने अपनी दिनचर्या को बड़े कठिन नियंत्रण में बांधा। प्रातः 5 बजे उठना और ठंडे पानी से नहाकर कोष्ठ में, जबकि वहाँ पर गर्मियों में भी कोई ठंडा पानी नहीं सहता था और स्वयं शेखर को उसका बिल्कुल अभ्यास नहीं था। कोष्ठ बंद, तौलिये से बदन रगड़ना, 5:30 बजे खिड़की के बाहर कूद कर घूमने जाना, कोष्ठ शुरू, किवाड़ खोलने पर पिता जाग जाते और शेखर को पता किसी को देना नहीं चाहता था। उसे डर था कि पिता फौरन उसके प्रोग्राम में दखल देंगे और ठंडे पानी का स्नान तो अवश्यमयी बंद कर देंगे। जिस पर शेखर का खास जोर इसलिए है, वह सबसे अप्रिय काम है उसकी दिनचर्या में। कोष्ठ बंद, सवेरे नाश्ता नहीं करना, 10 बजे भोजन, यदि 10:05 तक ना मिल जाए तो उपोषण, फिर चाहे माँ कुछ भी कहे। और इसी प्रकार सारा दिन नियम के बाहर कोई वस्तु नहीं खानी। कोष्ठ में पानी पीने के भी समय नियत थे। किसी से बोलना नहीं, ताश नहीं खेलना, कोष्ठ में ऐसा फिजूल कोई खेल नहीं खेलना। कोष्ठ बंद, गरज या कि चर्या के बाहर कोई भी बात नहीं हो सकती थी और चर्या ब्रिटिश शासन की तरह मनोनीत अर्थ की अनुमति भी नहीं देती थी। उसमें परिवर्तन के लिए स्थान था तो एक कि जिस काम में बहुत अनिच्छा हो उसे 2 बार किया जाए। प्राय शेखर को 2 बार नहाना पड़ जाता था, जिसका तरीका यह था कि पहली बार नहाकर बदन सुखा कर कपड़े पहन ले और गर्म होते ही उन्हें उतार कर फिर नहाए। कभी रोटी में देर हो जाती तो वह नहीं खाता। माँ आग्रह करती तो भी नहीं सुनता, सुनना मोह था। और तब वह समझ लेती कि मुझ पर क्रोध है और वह भी ना खाती। एक बार उन्होंने 3 दिन खाना नहीं खाया, पर शेखर टस से मस नहीं हुआ। उसने माँ से यह भी नहीं कहा कि तुम खा लो। वहाँ इस पर झुंझलाता रहा कि माँ क्यों मुझे डिगाना चाहती है। तीसरे दिन माँ ने कुड़ कर कहा, अच्छा मुझे क्या, मरे चाहे जिए, मुझसे नहीं ये ढंग सहारे सहारे जाते, और रोटी खा ली। उसके बाद शेखर के काम में कुछ भी रुचि रखना छोड़ दिया, कम से कम मुंह से कभी कोई शब्द नहीं निकाला। एक दिन शेखर ने माँ को पिता से कहते सुना, यह लड़का तो पागल हो जाएगा, इसे किसी को दिखाओ, इसका दिमाग खराब हो रहा है। शेखर ने जाकर मोरिस फैमिली मेडिसिन निकाली और आराम से उसके पन्ने उलटने लगे। अनुक्रमणिका देखनी उसे तब नहीं आती थी, किसी नए रोग का नाम पढ़कर उसका निदान पड़ता और निश्चय हो जाता कि यह उसे है। इसी प्रकार 150 रोगों के लक्षण अपने में पाकर वह मानसिक रोगों तक पहुंचा। तब उसने देखा मेलनचोलिया भी उसे है। इसके बाद वह हाइपोस्टेड्रिया पर पहुंचा और उसके लक्षण पढ़ते हुए उसने पढ़ा, यह रोग का रोगी प्राय डॉक्टर की किताबें पढ़ता है और उसे वहम रहता है कि प्रत्येक रोग उसे हुआ है। शेखर ने कहा, अरे यही तो मुझे है। उसने किताब बंद कर दी। तब एकाएक उसके सब रोग दूर हो गए। वह ठठाकर हंस पड़ा, लेकिन वह शरीर के भीतर ही भीतर कुछ अशांति, कुछ प्रस्फुटन वह बंद नहीं हुआ। वह वैसा ही अनुभव करता रहा जैसा भूमि के नीचे ही नीचे अंकुर फूटने से पहले कोई बुझ करता है, एक नए जीवन की उत्पत्ति के दबाव से फटता हुआ सा। वह एक नई दृष्टि से अपने माता पिता की ओर देखने लगा। उसके सारे उत्तरहीन प्रश्न जिन्हें उसने किसी तरह दबा कर रखा था और निरंतर दबाने की चेष्टा करता जा रहा था, दुगने दबाव से, दुगनी शक्ति से उसे सताने में एक पाशविक हिंस्र सुख पाते हुए लोट लोट कर आने लगे। और उसके कुछ एक प्रश्नों के जो अधूरे उत्तर उसे नौकरों से या पिता के चपरासियों से या चुरा कर पढ़े हुए किताबों से मिले, उनसे उसकी उग्रता और भी बढ़ गई। एक दिन शेखर के माता पिता में लड़ाई हो गई। झगड़े उनके कई हुए थे, गर्जन तर्जन कुछ वर्षा, कुछ कभी कुछ दिन अनबोला और माँ की ओर से अनाहार या कोई बात बड़ी नहीं थी। शेखर को इसकी विशेष चिंता नहीं होती थी, सिवाय इसके कि ऐसे दिनों में वह दोनों से बच कर रहने की, जहाँ तक हो सके उसके सामने ना आने की चेष्टा में रहता था। पर उस दिन उसकी बातों की भनक कान में पड़ते ही शेखर ने जान लिया कि यह झगड़ा कुछ और प्रकार का है। वह जो कुछ थोड़ा बहुत वहीं से सुन सकता था, सुनने की चेष्टा करने लगा। पास आने की उसे हिम्मत नहीं हुई, वह अधिक नहीं सुन पाया। केवल कभी जब उसके स्वर बहुत ऊंचे हो जाते, तभी वह कुछ सुन लेता। माँ ने कहा, तब मुझे मार डालो। पिता ने कहा, कुछ शर्म करो, कोई अगर आगे कुछ कहना, बस शेखर सुन नहीं पाया। वह दबे पांव उठाकर किवाड़ के पीछे आया, उसकी आड़ से झांक कर धक से होकर एकदम लौट गया। छोटी गोल मेज के ऊपर एक और पिता खड़े थे और उसके सामने दूसरी ओर माँ थी। उसका आंचल सिर पर नहीं था, वह छाती खोलकर खड़ी वो खड़ी कह कर रही थी, तो मुझे मार डालो। पिता एकदम दफ्तर चले गए। शेखर ने कमरे में एक विचित्र सा स्वर सुना, शायद माँ छाती पीट रही थी। दो चार बार पीट कर वे कहीं दूसरे कमरे में चली गई। शेखर खिड़की के आगे बैठा था, वहीं से बाहर देखता हुआ इस घटना को मन में फेरने लगा। उसे याद आया, कुछ दिनों से माता पिता में जाने क्यों कुछ खिंचाव सा था। वैसे उसने वैसे महत्व नहीं दिया था, लेकिन आज उसे जान पड़ने लगा कि इस विस्फोट का मूल कई दिनों से फैलता चला आ रहा है। खिड़की के सामने से होकर माँ निकली। शेखर ने देखा, उसकी चाल में एक दृढ़ता है जो सदा नहीं होती। वह सीधी तेजी से चली जा रही है, और फिर वह सोचने लग गया। शाम को पिता दफ्तर से लौटे, उन्हें द्वार पर मिलना कोई नहीं आया। भीतर गए, नौकर ने चाय तैयार कर रखी थी, पर वहाँ कोई बैठा नहीं था। सोने के कमरे में गए, वहाँ कोई नहीं था। रसोई के आंगन में गए, वहाँ कोई नहीं था। बाहर झांका, नौकर चुपचाप खड़ा था। शेखर ने स्वयं ना प्रकट होते हुए भी यह सब देख लिया। पिता ने आकर कहा, तुम्हारी माता कहाँ है? पता नहीं, रविदत्त चंद्र यहाँ आओ। जी, तुम्हारी माता कहाँ है? पता नहीं, अंदर होगी। अंदर तुम्हारा सिर? पिता धधक उठे। उन्होंने पूरे हाथ से एक तमाचा चंद्र को लगाया, एक रवि के, जिससे दोनों भन्ना गए। फिर शेखर के पास आकर उसे छाती में इतनी जोर से धक्का दिया कि वह दूसरी कुर्सी से टकरा कर गिरा। तुम सब इसलिए यहाँ किस लिए मरे हो? सब माँ का पता नहीं रख सकते? विवश क्रोध की चरम सीमा की एक आदर मांगने वाली चीज है। शेखर ने उठकर बिना प्रतिहिंसा के पिता की ओर से देखते हुए कहा, आप दफ्तर गए थे, तब घूमने गई थी। पिता ने कान के पास घूंसा लगाते हुए कहा, पहले क्यों नहीं कहा था? फिर एकाएक उसका स्वर टूट गया, बोले, वह गई, चली गई। यह शब्द मानो उन्हें और भी जड़ित करने लगा। उन्होंने कहा, गई, जरा सी बात पर यही यूं ही लड़कर चली गई। ऐसा जान पड़ने लगा कि मानो वे हिलना चाहते हैं और हिल नहीं सकते। तीर से आहत उठने से विवश हिरण की तरह वे शेखर की ओर देखने लगे और बोले, शेखर, तुम्हारी माँ चली गई। तब एकदम से उनका जड़ित क्रोध सजीव क्रिया में परिणित हो गया। गिरकर नीचे ही बैठे हुए शेखर को बालों से पकड़कर उठाते हुए बाहर की ओर ढकेलते हुए उन्होंने कहा, मरते क्यों नहीं हो तुम? जाओ उसे ढूंढो। किवाड़ को लात मारकर खोलते हुए कहा, किधर गई थी वह? और बाहर दौड़ पड़े। शेखर एक ओर गया, दूसरी ओर। नौकर भी कुछ समझ कर एक ओर चल पड़ा। घर से 2 मील पर एक जंगल था, उसी के पास एक खुली जगह में माँ इधर उधर घूम रही थी। शेखर ने दूर से उन्हें देखा और साथ ही देखा कि और दूर दूसरी ओर से पिता चले आ रहे हैं। वहीं से वह उल्टे पांव लौट पड़ा। उसे लगा कि वह मर भी जाए तो उससे आगे का दृश्य देखने के लिए नहीं रुक सकेगा। अंधेरा होते होते दोनों लौट आए। पिता ने बाहर ही से नौकर को आवाज़ दी, हम खाना नहीं खाएंगे, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, और सोने की कमरे में चले गए। द्वार बंद कर दिया। सवेरे शेखर ने देखा कुछ नहीं है, लड़ाई के चिन्ह नहीं है, वह पहले के बादल भी मिट गए हैं। शेखर के जीवन में पहली बार पिता ने चाय का आधा प्याला पीकर माँ से कहा, आज बहुत अच्छी बनी है, ले यह प्याला तू भी पी। शेखर ने कुछ और भी देखा। घर की एक जो युवती नौकरानी है, जो कमला को खिलाती है और सदा हंसती है, वह बड़ी सहमी हुई सी दूर दूर रही है, यद्यपि उसे किसी ने कुछ नहीं कहा। शेखर घर के बाहर खड़ा था। दोपहर का समय था। तार वाले ने एक तार ला कर दिया। शेखर ने पिता की ओर दस्तखत किए और तार लेकर भागा हुआ भीतर गया। पिता सोने के कमरे में थे, द्वार बंद था। शेखर ने जल्दी से द्वार खोला और कहा, पिताजी। माता पिता अलग हट गए। पिता ने एक बार घूर कर उसकी ओर देखा, फिर सहज स्वर में कहा, क्या है? लेकिन माँ लज्जा से सपकपाई हुई सिर झुकाई और मुंह फेर खड़ी रही। पिता ने कहा, क्या है? शेखर ने लपक कर तार पिता को दिया। उन्होंने पढ़कर कहा, सुनो, सरस्वती की लड़की हुई है। माँ ने विस्मय से कहा, आई अभी? पिता ने कहा, शेखर तुम जाओ। शेखर धड़कते हुए हृदय से बाहर चला गया, पीछे द्वार बंद करता हुआ, ताकि उसकी आड़ में खड़ा होकर सुन सके। माँ ने कहा, अभी तो 8 महीने हुए हैं। पिता ने विस्मय दिखाते हुए कहा, हाँ देखो। शेखर को लगा वह द्वार की ओर आ रहे हैं, वह भाग गया। सरस्वती की लड़की हुई है, सरस्वती के, और शादी के बाद रमा अपने पति के घर चली गई। शेखर सोचने लगा, तब सरस्वती के शरीर में भी लड़की छुपी हुई थी, और उस दिन सरस्वती ने कहा था, मुझे नहीं पता, आज होती तो शेखर पूछता, आज तो उसे पता है ही, अगर उस दिन नहीं भी था, पर क्या वह बताती? और इसी उलझन में शेखर को याद आया, उस समय जब उसने द्वार खोला, तब क्या था जिससे वह सहमे, क्यों मां लज्जित हुई? था कुछ नहीं, उसने देखा पिता की बाहें माँ को घेरी हुई थी और पिता कुछ कह रहे थे। बस शेखर जानता है कि कभी स्वयं उसकी बाहें मानो किसी को घेर लेने को, दबा डालने को फलक उठती है, और इसकी कल्पना में उसे सुख होता है, अभिमान होता है, अपने प्रति आदर होता है। तब वह डर, वह लज्जा क्यों? क्यों क्यों? बाहें बाहें हैं, सामर्थ्य सामर्थ्य है। क्या था जो छिपा रहा, जो शेखर ने नहीं देखा और जो लज्जास्पद है? अभी ये प्रश्न गूंज ही रहे थे कि सरस्वती का पत्र आया, लड़की मर गई है। माँ ने पढ़कर पिता से कहा, उसने लिखा है लड़की 8 मासी थी। फिर कुछ एक भाव से कि यही होना था, उन्होंने कहा, हाँ आ। 4 दिनों 6 घंटे की होकर लड़की मर गई, और माँ कहती है सरस्वती ने लिखा है लड़की 8 मासी थी, और नया रहस्य क्या है? शेखर ने मौका पाकर रसोइयों से पूछा, 8 मासा बच्चा कैसा होता है जो 8 मास बाद पैदा हो जाए? क्या मतलब, किससे 8 मास बाद? बच्चा 9 महीने माँ के पेट में रहता है ना। इसे गांड में बांधते हुए शेखर ने पूछा, वहाँ कैसे आता है? रसोईया हंसने लगा, बोला, शेखर बाबू, यह अत्ती से पूछो। और उस युवती नौकरानी की ओर इशारा करके और भी जोर से हंसने लगा। शेखर उससे कुछ शर्माता था, पर उसके पास भी गया और शेखर की भाषा नहीं जानती थी। शेखर किसी तरह उसकी भाषा में इतना ही कह पाया, बच्चा किस तरह? अति हंसने लगी। उसने शेखर का प्रश्न नहीं समझ आया। उसने शेखर की नकल लगाते हुए कहा, बच्चा किस तरह? और फिर दोनों हाथ घुमाकर जताए कि मैं नहीं समझी। शेखर किसी तरह अपना प्रश्न समझाने की चेष्टा ही में था कि माँ ने आकर पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? शेखर शक पका कर गया। अति अपने काम में लग गई। माँ ने और भी संदिग्ध स्वर में कहा, क्या कर रहा तू अति के पास? क्यों रे अति, क्या कहता है या? अति ने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे तो पता नहीं। शेखर चला गया। इस अंधकार के पट पर बिजली की तरह थिरकती हुई आई एक रेखा शारदा। शेखर के पिता का बंगला बबूल के वृक्षों और झाड़ियों के घिरे हुए एक पहाड़ के अंचल में है। उनके घर के सामने तलहटी के पार एक पहाड़ के शिखर पर एक छोटा सा पेड़ है, जिसकी शाखाएं और पत्तियां मिलकर आकाश की पृष्ठभूमि पर अंग्रेजी एस अक्षर का आकार बना देती है। शेखर से कुछ उतर उतर कर चारों ओर यह पहाड़ देवदारू, चीड़ और यूकलिप्टस वृक्षों के वन से घिरा हुआ है। यही सुंदर चित्र शेखर की चंचल आंखों में एकमात्र खाद है। आंखें जो किसी नवीनता की, किसी परिवर्तन की भूखी है और जो अपने सब और परिव्याप्त एक स्वरता से उकताई हुई है। शेखर के पिता उस देश में परदेशी है। उनकी उत्तर भारत की प्रांतियता यहाँ दक्षिणी प्रांतियता और सांप्रदायिकता में खो गई है। वे आदरणीय होकर भी बहिष्कृत हैं और इससे उत्पन्न अकेलेपन के अलावा शेखर अकेलेपन की उस भयंकर अवस्था में भी है जिसमें संसार का सारा अन्याय, सारा ध्रय और भय, साहस और कायरता, उद्धंडता और विश्वास और स्नेह, संदेह और क्रोध, प्रेमी और विद्वेष का एक साथ ही भरा हुआ है। अनेक भूखा शेखर, स्वयं अपनी भूख को ना पहचानने वाला शेखर, अपने किसी प्रश्न का उत्तर ना पाकर, सब और उपेक्षा और निराशा की दीवारें खड़ी पाकर अपने कमरे की खिड़की के आगे बैठ जाता था और आकाश में बिखरे से उस एस चिन्ह को देखता हुआ सोचा करता था, या क्या मेरा ही नाम विधाता ने इस विराट शून्यता में लिख डाला है? क्या डेमाक्लिज की तलवार की तरह यह सांप सदा ही मेरे ऊपर मंडराता रहेगा? तभी एक दिन माँ को एकाएक याद आया कि संसार में उनके अलावा भी कोई बसता है और उन्होंने मिलने की ठानी। शेखर के पड़ोस में उस बिखरे हुए पहाड़ी इलाके में 5-5 मील का पड़ोस होता था एक मद्रासी परिवार रहता था। उसके वयस्क प्राणियों को शेखर देख चुका था। वे एकाध बार मिलने आए थे। विदेश में शिक्षा पाकर उन्होंने सीखा था कि संसार यदि पृथ्वी पर फैला हुआ नहीं तो कम से कम अपनी घर की परिधि से अधिक ही विस्तृत है। और उन्हीं की इस भेंट को लौटाने के लिए माँ उनसे मिलने जा रही थी। शेखर को साथ जाने की आज्ञा मिली क्योंकि जिनके यहाँ जाना था वे हिंदी नहीं जानती थी और शेखर की माँ ना उसकी भाषा जानती थी ना अंग्रेजी। नूतनता का भूखा शेखर खुशी खुशी माँ के साथ चल पड़ा। वे वहाँ पहुँच चुके हैं। यूकेलिप्टस के वृक्षों का छोटा सा कुंज पार करके वे उनके बंगले में घुस आए हैं और प्रारंभिक परिचय इत्यादि हो चुका है। जब वह और उनकी बंगला बाहर के बाहर लगे हुए तख्ते पर बंगले का नाम गलुड़ नीड़ पढ़कर भीतर घुसे, तब उन्होंने देखा बंगले के सामने घास पर ग्रीष्मामनी बैठी है और उसके पास एक युवती और इन दोनों से कुछ दूर पर मटर की बेलों के मध्य में खड़ी एक लड़की फूल तोड़ रही है। पैरों की आहट सुनकर उसने चौंक कर नुवांतगुत को की ओर देखा, फिर जल्दी से अपने खुले बालों में अटके हुए फूलों को छिपाती हुई अंदर भाग गई। तब दोनों बैठी हुई स्त्रियां उठी और स्वागत को बढ़ आई। किसी तरह परिचय ही हो गया क्योंकि परिचय प्राप्त करने के लिए अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है, वह तो मुस्कुरा भर देने से हो जाता है। सब लोग भीतर चले गए। एक सजे हुए कमरे में बैठे हैं। माँ कुर्सी पर बैठी है, पुत्र उसके पास ही खड़ा है। कोष्ठ में यद्यपि उसे कुर्सी दिखाकर बैठने को इशारा किया जा चुका है, कोष्ठ बंद। गृहस्वामिनी अंगीठी के पास लकड़ी की चौखट में बैठी है और युवती उसके पुत्री फर्श पर, और सब चुप है। गृहस्वामिनी प्रतीक्षा में, पुत्री इसलिए कि उसका कोई कर्तव्य नहीं है, माँ इसलिए कि वह अंग्रेजी नहीं जानती, पुत्र पर ही आशा लगाए बैठी है और पुत्र इसलिए कि इस नए संसार की अत्यधिक नूतनता में उसे कुछ भी कहने को नहीं मिलता है। वह कभी अपने पैरों की ओर देखता है, वह उसे अत्यंत भद्दे जान पड़ते हैं। तब वह दाहिने पैर को बाएं पैर की ओर से और बाएं को दाहिने पैर से छिपाने का प्रयत्न करता है, और फिर यह सोचकर कि सब लोग मेरे उज्जड़पन पर हंस रहे होंगे, अपने को कोसता है। कभी अपने हाथों की ओर देखता है तो वह उसे बहुत बड़े बड़े बेहुदा और निकम्मे जान पड़ते हैं। वह एक हाथ से दूसरे को पकड़कर सोचता है कि इन्हें कहीं छिपा दूं या काट डालूं, और कभी उसका ध्यान अपने कपड़ों की ओर जाता है तो संसार में कभी किसी ने ऐसे भद्दे कपड़े नहीं पहने होंगे। अपने खड़े होने के ढंग की ओर ध्यान जाता है तो ऐसे खड़ा होता है जैसे किसी सर्कस का जिराफ, और यह सोचकर वह धम से बैठ जाता है। गृहस्वामिनी उसकी ओर देखती है तो सोचता है या सोच रही है कि इस जंगली को बैठना भी नहीं आता, अभागा बेचारा और अभागी वह संदी। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। कुछ बात चलती ना देखकर गृहस्वामिनी ही एक चेष्टा करती है। तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जिस घोर मन शक्ति को लगाकर उसने उत्तर में कहा, मैं घर ही पढ़ता हूँ, उसकी कोई क्या कल्पना करेगा? कोई परीक्षा दोगे? उत्तर में एक शब्द, और वह सोच रहा है कि वह शब्द भी बहुत है, मैट्रिक। तब उसकी माँ पूछती है, वे क्या कर रही है? और बताने लगता है, उसे क्षण भर जीवन मिल जाता है। एक दूसरा स्वर कहता है, बिना स्कूल गए परीक्षा दी जा सकती है? या उस युवती का प्रश्न है। हाँ। एक तीसरा स्वर कहता है, अरे या कैसे? या चौंक कर देखता है, कमरे में उस लड़की ने प्रवेश किया है जो बाहर फूल तोड़ती हुई भाग गई थी। वह एक बार बड़ी बड़ी खुली आंखों से जल्दी जल्दी उसे देख जाता है, कहीं आंखें ना मिल जाए, और फिर अपने पैरों की ओर देखने लगता है, भद्दे पैर, अपने हाथों की ओर निकम्मे हाथ। उसके प्रश्न उत्तर नहीं दिया गया है। उसकी माँ कहती है, यह मेरी लड़की है शारदा। पर किसी के कुछ कहने के पहले ही वह अपना प्रश्न दोहराती है, बिना स्कूल जाए परीक्षा कैसे दी जा सकती है? थोड़ी देर मौन के बाद उसे ध्यान आता है, इस प्रश्न का उत्तर अब भी नहीं दिया गया है या अशिष्टा है। इस बात को सोचकर वह और भी घबरा जाता है और उत्तर देने में स्वतः असमर्थ हो जाता है। तब वह कहती है, क्या सोच रहे हो? उत्तर क्यों नहीं देते? कैसी बेहाया है यह लड़की, मैं उत्तर नहीं दे रहा हूँ तब भी इतने प्रश्न पूछती जा रही है। यही सोचते हुए वह देखता है कि लड़की की वेस्टर्न में भी लज्जा नहीं है। उसके कभी तक कुछ गीले बाल जो बाहर खुले हुए थे, अब वह रेशमी रिबन से बंधे हैं। शरीर पर एक सफ़ेद कुर्ती पहने हैं और एड़ियों से ऊंचे सफ़ेद लहंगा या पेटीकोट, और वह बिल्कुल निर्लज कौतूहल से उनको और देख रही है, ऐसी दृष्टि में जो उसे अधिकाधिक व्यस्त करती जाती है और क्रोध भी दिलाती है। और इस अवकाश में सब चुप है। माँ शेखर से पूछती है, या क्या कह रहे हैं? तो वह अपनी चुप्पी छिपाने के लिए टालते हुए धीरे से कहता है, कुछ नहीं। माँ भी तो माँ है, वह समझती है। बेटे से पूछती है, शर्मीले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कहती है, सही। और कहते हैं, वह समझ जाता है और अपने को कोसने लगता है, और उसकी माँ मुस्कुरा कर उसकी ओर उंगली उठाकर कहती है, यह सही है। वह सब समझती है और हंस पड़ती है, पर अभी उसका अपना अपमान का प्याला नहीं भरा है। अभी उसके धूल में पड़े हुए शरीर को रौंदा भी जाएगा। शारदा हंसकर उसकी ओर देखती है, वही कहती है, गुड ग्रेसियस, सच ए बिग सिली बॉय लाइक यू। कोष्ट में, अरे इतना बड़ा होकर भी। माँ धारित्री, तू फट क्यों नहीं जाती? वह अपना अपमान नहीं सह सकता, उसे तो कैसे सह रही है? और यह बेहाया लड़की तो पता नहीं क्या कह डालेगी। आह, उसकी जान में जान आई। शारदा की माँ उसे डांट रही है, अवश्य चाहिए, नूतनता नूतनता है, पर ऐसी बेहाई। शारदा कुछ अप्रतिभ सी उठकर वहाँ से चली गई। तब किसी ना किसी तरह सभ्यता द्वारा निर्दिष्ट इस भेंट को पूरा करने के लिए बातचीत चलने लगे, पर उसका समापन अभी दूर था। शारदा फिर आई, अब की बार अपनी बाहें कंधे पर बहंगी हुई की तरह वीणा रखे हुए आकर उसके पैरों से कुछ ही दूर हटकर फर्श पर बैठ गई। माँ ने बेटे से कहा, पूछो कुछ वीणा बजाता है, बड़ी अच्छी लगती है। बेटा शारदा की माँ की ओर उन्मुख होकर कहता है, पूछती है कोई वीणा बजाता है, बड़ी अच्छी लगती है। हाँ शारदा बजाती है, वह चुप। इसके बाद वार्तालाप की स्वाभाविक गति की क्या प्रेरणा करती है और वह नहीं सोचता। शारदा से प्रार्थना करने का, कुछ भी कहने का काम उससे नहीं होगा। शारदा हंसती है, वीणा की तारें कांपने लगती है। उसका आत्मसम्मान कहता है यह अपनी मुखरता पर लज्जित है। उसकी बुद्धि कहती है अपनी माँ को प्रश्न करने की चेष्टा कर रही है। ये वर्ण संधि के दिन थे जभी तो, नहीं तो शायद वह समझता कि ये दोनों ही कारण नहीं है। कारण है स्त्री प्रकृति का एक निगूढ़ तत्व, उसकी अत्यंत सुलभ एक बाहरी व्यपत्य जिसमें उसका सौंदर्य और उसकी सामंजस्यता छिपी हुई है। क्या कुछ छिपा हुआ है जो फूट निकला है वीणा के झिंकृत तारों में से। सिनेमा की क्रमशः केंद्रित हुई स्पॉटलाइट की भांति उसके हृदय की भावनाएं संसार के विस्तार में से सिमटकर एक छोटे से बिंब पर केंद्रित हो जाती है और फिर धीरे धीरे उस पर से भी हट जाती है, अंधकार में कहीं खो जाती है, बह जाती है। वह बिंब है शारदा के अधभिगे रिवन से बंधे हुए केसों का गुच्छ, जो उसके कंधे से फिसल कर उसके कान के नीचे छिपने का प्रयत्न कर रहा है। उसे देखते ही वह अनुभव करता है संगीत की जिस लहर में वह बहा जा रहा है, वहाँ एक कोमल सफेद धुएं की भांति पहाड़ से टकराकर भागते हुए नए बादल की भांति है, और उसमें शारदा के शरीर से उड़ती हुई एक सुरभित भाप मिल रही है और कैसों का गीला गीला सोंधा सोंधा सौरभ। उसे जान पड़ता है उस एक घनपुंज ने उन दोनों को घेर लिया है। उसे जान पड़ता है शारदा के केसों का सौरभ उसके सारे शरीर को एक स्नेह भरे स्पर्श से छूता जा रहा है, किंतु जहाँ वह छूता है शरीर झुलस जाता है और वह उन असुगंधित केसों के स्वाभाविक सौरभ को पी रहा है। उसको जिसमें नीम के बोर की सी दबी सी सुगंध आ रही है और उससे उसकी अंतरात्मा जल उठी है, और ऐसा जलता हुआ भी वह एक अथक आनंद से भरा हुआ उसी बादल के साथ आकाश में बहा जा रहा है। शारदा के प्रसव में संसार पार हो चुका है। अब वह बादल का टुकड़ा आकाश की सीमा को अनंत को पार करने बढ़ा चला आ जा रहा है। उसे जान पड़ता है वह आगे की लपटों की सांसें ले रहा है। उसे जान पड़ता है उसका दम घुट रहा है और वह देख रहा है शारदा के बालों के उस उद्दंड गुच्छ की ओर और अनंत को पार करके अनंत के पार तक। पर लंबी से लंबी यात्रा भी समाप्त होती है। वह रुक गया है, कहाँ पहुँच गया है। वीणा भी चुप हो गई है। शारदा तनिक घूमकर उसकी ओर देखती है एक चिढ़ाने वाली हंसी से, जो उसे देखते ही लुप्त हो जाती है। उनकी आंखें मिलती है। वह जो अब तक इसी से डर से किसी की ओर अधिक देर तक नहीं देखता, वह जान ना जाए कि कोई मेरे की ओर देख रहा है। आज इतने लोगों के सामने इस लड़की को देख रहा है, आँख झपकता भी नहीं, झुकाने की बात ही क्या। पर अनंत को पार झुला देने वाले क्षण लंबे नहीं होते, दोनों एक साथ ही आंखें झुका लेते। ठीक उसी समय माँ कहती है, कहो बहुत अच्छा बजाती है। या तो वह मर कर भी नहीं कह सकता, शारदा से ही नहीं किसी भी व्यक्ति से नहीं। माँ एक बार दबे क्रोध से उसकी ओर पूछ कर देखती है और अपने कुछ कहने से समय तो इसलिए नहीं है। फिर कहती है, पूछो कौन सिखाता है। वह पूछ लेता है गृहिणी से, मैं ही सिखाती हूँ माँ के कहे अनुसार, तो आप भी जानती है थोड़ा थोड़ा, आदेशानुसार आपसे भी फिर किसी दिन सुनेंगे। और मन ही मन, आज तो आज के लिए बहुत सुन लिया है और नहीं सुन सकता। अब की बार बिना आदेश संगीत सीखने की मेरी भी बहुत इच्छा है, पर अवसर साथ नहीं देता, कोई सिखाने वाला नहीं मिलता, या बिना आदेश के, क्योंकि शारदा उठकर फिर भीतर चली गई है। अब भेंट समाप्त करने की तैयारी है, माँ उठ खड़ी हुई है। वह चाहता है कि शारदा के लौट आने तक रुक जाए, उसे विश्वास है कि वह आएगी, पर जिस प्रकार यहाँ आते समय राय नहीं ली गई थी, उसी प्रकार अब भी नहीं ली जाएगी। जब तक वह बंगले के फाटक तक पहुँचे, उसे जान पड़ता है कि किसी शरारत भरी आंखें उसकी ओर देख रही है। उसकी पीठ पर ऐसी गुदगुदी सी हो जाती है। वह लौट कर देखता है, उसका भ्रम था, और एक आवाज़ उनके कान में गूंजती है, सच ए बिग सिली बॉय लाइक यू। और वह अपने घूमने की सफाई देने के लिए माँ से कहता है, माँ, इस बंगले का नाम का अर्थ है गरुड़ का घोंसला, कैसा विचित्र नाम है ना। हाँ तो नास्तिक जब विश्वास करने पर आता है, तो बड़े पंडित उसके आगे नहीं टिक सकते। उसकी अंधविश्वास की सर्वग्राहिणी लहर के आगे संदेह की कंदराएं, बुद्धि के पहाड़ सब समतल हो जाते हैं और डूब जाते हैं। वैसा ही है वह संधि का व्यक्ति मात्र के प्रति घृणा और विद्वेष के काल का प्रेम। जिस प्रकार के आंचल में उसका घर है, उसके चारों पर से शारदा के घर के सामने वाले यूकिलिप्टस वृक्षों का कुंज दिख जाता है, और उनके ऊपर बंगला तो नहीं, बंगले का कोई अंश भी नहीं, किंतु उसकी चिमनी से उठता हुआ धुआं अवश्य नजर आता है। इसलिए वह पहाड़ की चोटी पर बैठकर उधर देखा करता है, और बैठकर इस नूतनता पर विचार किया करता है, क्योंकि वह अभी तक नहीं जानता कि उसे क्या हुआ है, वह क्या चाहता है। क्योंकि जब वह उस घर की याद, उस भेंट की याद करता है, तब उसे दिखता है गृहिणी का मुख, याद आता है उसी का स्वागत। शारदा का तो कुछ भी याद नहीं आता, सिवाय इसके कि जब उसके सब और अत्यंत निस्तब्धता छाई होती है, तब उसे जान पड़ता है कि वह कहीं से वीणा का स्वर सुन रहा है, और वह उमी की तरंग में बहने लगता है, उड़ने लगता है, भूल जाता है, विशालता में खो जाता है, और फिर शून्य हो जाता है। कभी-कभी उसका मन दो दो तीन तीन मिनट के लिए उस अंतरिंद्रिय निर्वेद परम शून्यत्वत्व में अनुभूति को पा लेता है, जिसे क्षण भर पाने के लिए ऋषि मुनि तरसते थे, उस अनुभूति को जिसमें वह संसार से एकरस हो जाता है और कुछ नहीं रहता, और जिसका ज्ञान उसे उसकी समाप्ति के बाद ही होता है। तब सब सफेद रेशमी रिबन का एक छटका हुआ उसे चौंका कर कहता है, सच ए बिग सिली बॉय लाइक यू। और इतना हो जाने पर भी वह इस भावना को शारदा के साथ नहीं संबद्ध कर पाता। अपने औपन्यासिक ज्ञान की याद में आ जाने पर वह यदि कभी सोचता है कि कहीं मैं प्रेम तो नहीं करता, तो इस प्रश्न के उत्तर में उसे एक प्रश्न ही मिलता है, किससे, माँ से या शारदा से। और वह उत्तर नहीं दे पाता और झुंझलाता है, और फिर उसी शून्यत्व में खो जाता है, वीणा के संगीत के भ्रम से उत्पन्न उस निर्वेद जगत में, और फिर जागता है। तब एक दिन उसे इस चिमनी का धुआं भर देखने से संतोष नहीं होता, वह खोया हुआ सा उस घोंसले की ओर चल देता है, जिसमें उसकी सारी भावनाएं सोती है। यूकेलिप्टस के कुंज में घुसकर वह एक बड़े से वृक्ष की छाया में बैठ जाता है। ये पतझड़ के दिन हो रहे हैं, इसलिए वृक्ष के नीचे लाल, भूरे और पीले पत्तों का ढेर लगा हुआ है जिस पर वह बैठा है। यहाँ से वह घोंसला दिखता है। उसके सामने एक बड़ी सी खिड़की है जिसके शीशों के भीतर एक फूलदार पर्दा पड़ा हुआ है। पर्दे के पीछे शायद कमरा खाली ही है, किंतु जो कुछ पर्दे के पीछे है वह दिख तो सकता नहीं, कल्पना को झूठा तो कर सकता नहीं। इसलिए वह अपनी अंतर्दृष्टि से देखता है कि तीनों स्त्रियां उसी कमरे में बैठी होंगी, और फिर उड़ जाता है। वीणा के स्वर में घुली हुई अपनी कविता की उड़ान में, क्योंकि वही संधि काल में कौन कवि नहीं होता। उसके शरीर में एक बिजली सी दौड़ जाती है। इस यूकेलिप्टस कुंज में दूसरे सिरे पर कौन प्रवेश करने लगा है? रूप नया है, वेश नया है, विन्यास नया है और प्रकाश नया है, किंतु बिजली की तरह दमकदर चेतना कहती है शारदा। और वह लज्जा से घुला जा रहा है कि कहीं वह उसे ऐसी परिस्थिति में देख ना ले। वह पेड़ के पीछे छिपता है, फिर भागता है, दम साध कर भागता है, और वहाँ से बहुत दूर आकर अपने घर के बाहर पहुँच कर रुकता है। तब फिर एक आवाज़ आती है, सच ए बिग सिली बॉय लाइक यू, और वह धीरे धीरे अपने घर के अंदर चला जाता है। और उस अभागे को अब भी नहीं मालूम हुआ कि उसके जीवन में जो परिवर्तन, जो नूतनता आ गई है, वह क्या है, किस अपार शक्ति का अवतरण है।